Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन. आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं. श्रोताओं, क्योंकि आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो अपने सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े कोई भी सवाल के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत.
A warm welcome, Sharad.
Thank you so much, Prachi. Thank you so much, Rajesh. और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन.
श्रोताओं, चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
Delegations from United States and Iran reach Islamabad for talks to secure lasting peace in West Asia. Benchmark domestic indices post their strongest weekly gain in more than 5 years. Sensex and Nifty surge nearly 6%. And global crude oil prices log steep decline of around 13% this week.
पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के लिए अमरीका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा. घरेलू शेयर बाजार ने 5 साल से ज्यादा समय में सबसे अधिक साप्ताहिक बढ़त दर्ज की. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 6% की वृद्धि हुई. और इस सप्ताह वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 13% की भारी गिरावट आई.
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
राजेश, हमारे साथ दिल्ली से अमित जुड़ रहे हैं. आइए इन्हें अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करें. अमित जी, आपका कार्यक्रम में अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
सर नमस्कार.
नमस्कार
सर. मैं 50% माइनस में है, तो क्या मुझे इस टाइम पे एवरेज करना चाहिए उनको? एक्चुअली मेरे 30% ही मेरे पास पूंजी बची हुई है, जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका 30% ही बचा हुआ है, तो क्या मुझे अभी एवरेज करना चाहिए?
चलिए अमित, आपका शुरू में क्या चीज माइनस में है तो नहीं समझ में आया, पर हम गेस करते हैं. मेरे ख्याल इनका या तो स्टॉक से मतलब होगा
जी,
या म्यूचुअल फंड से मतलब होगा. तो ये कह रहे हैं कि क्या मुझे एवरेज करना चाहिए, और जो श्रोता नहीं जानते एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब जब कीमत नीचे आती है तो आप नीचे की कीमत पर भी लेते हैं, जिससे आपका कहीं बीच में कीमत आ जाता है. हमेशा तो अमित एवरेज करना अच्छा नहीं होता है. एवरेज कोई ब्लाइंडली एवरेज नहीं करना चाहिए. अब ये तो अमित निर्भर करेगा, अगर आप, मुझे नहीं पता आप स्टॉक, क्योंकि आपका शुरू का शब्द, मुझे लग रहा है जब हम कॉल आपकी शुरू हुई तो शब्द वो हवा हवाई हो गया, तो उसमें अगर आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी का आपने स्टॉक लिया हुआ है इस पर निर्भर करता है. क्योंकि अगर मान लीजिए वो कंपनी का आगे भविष्य में बढ़ने का चांस नहीं, जब मार्केट, अब जैसे हाल में मार्केट रिकवर करी, अभी आपने खबरें सुनी, मार्केट ने इस हफ्ते रिकवर किया और अच्छा खासा रिकवर किया, अब आपका स्टॉक फिर भी नहीं रिकवर किया, तो क्या होता है जब कंपनी के फंडामेंटल्स, या कोई कोई कंपनी ऐसी है जिसका नहीं रिकवर करा, तो वहां पर एवरेजिंग का फायदा नहीं है. मैं आपको सलाह, देखिए हम इसमें ऐसे डायरेक्ट सलाह तो आपको नहीं दे सकते, कोई कंपनी का नाम हमें नहीं पता है, पर ऐसे में भी आप कह रहे हैं कुल 30% पूंजी बची है, तो मैं आपको सलाह दूंगा थोड़ा सा आप इंतजार कर लें, क्योंकि अगर आपकी यही जमा पूंजी है वो भी अगर लग गई, और मान लीजिए ये अभी जो बातचीत चल रही है इस्लामाबाद में, अगर ये कामयाब नहीं हुई, युद्ध फिर से भड़क गया, तो मार्केट हो सकता है और दबाव में आए, तो इसलिए इसको अभी आप मत लगाइए, थोड़ा सा इंतजार करें और इंतजार करके थोड़ा धैर्य रखें। कई बार प्राची राजेश, ना इन्वेस्ट करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, खाली इन्वेस्ट करना ही नहीं, ना करना भी स्ट्रैटेजी होती है। अमित, मैं उम्मीद करता हूं कुछ हद तक आपकी समस्या का समाधान होगा, पूरा समाधान तो फिर स्पेसिफिक्स में जाके होता है जो हम यहाँ करते नहीं है।
पेशेंस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस शरद।
हाँ, बट द प्रॉब्लम इज बिकॉज ही इज लेफ्ट विद नॉट मच फंड्स नाउ,
30%,
सो इट यू नो देयर इज अ फ्रेट व्हिच कम्स टू योर माइंड दैट व्हाट विल हैपन, कल को क्या होगा, यू नो ये भी मैं लगा दूं, उसको रिकवर करने के चक्कर में होता था ना, एक बार तालाब में कोई डूब रहा था, जो बचाने गया वो खुद भी डूब गया, तो ऐसा ना उस पूंजी को बचाने के चक्कर में ये पूंजी भी चला जाए। तो थोड़ा सा आप इंतजार करें, इन बातचीत को रिजल्ट पता लग जाएगा आजकल में, तो उसके बाद फिर एक निर्णय, दोबारा फिर आप कॉल जरूर करिएगा, क्योंकि आपको हम अभी आधे रस्ते छोड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। जी,
फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय विष्णु, अ वार्म वेलकम विष्णु।
नमस्कार
जी।
एक तो सर मैंने कोहली जी जब आते हैं सुन के ही सारे आंसर मिल जाता था, आज थोड़ा दो क्वेश्चन है। एक है ये जो अफगानिस्तान है उसका करेंसी हमारा करेंसी से स्ट्रांग क्यों है, एक दूसरा कोहली जी क्या परमानेंट नहीं हो सकते हैं इस प्रोग्राम में, ये दो क्वेश्चन था।
विष्णु जी, अफगानिस्तान देखिए करेंसी की जो स्ट्रेंथ होती है, करेंसी की वैल्यू किसी देश की अर्थव्यवस्था को सीधा नहीं बताती है। मैं आपको ऐसी छोटे छोटे देश बताता हूं जिनकी करेंसीज, कुवैत है, ऐसे देश है जिनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो ये इसका जो मापदंड होता है ना विष्णु जी, वो करेंसी का इस प्रकार से नहीं होता आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं। ये ठीक है पाकिस्तान वगैरह की करेंसी बहुत बुरी हालत है, पर क्या होता है बहुत सारी चीजों पे करेंसी, बहुत लंबा डिस्कशन है। अब अगर करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पे जाएं कि किस आधार पर करेंसी आपकी डिटर्मिन की जाती है, तो ये मतलब अफगानिस्तान को मजबूत नहीं बनाता है, पहले तो आपका सीधा मैं जवाब दूं, और ना ही करेंसी का नीचे होना, बल्कि आपको हैरानी होगी विष्णु जी सुन के, कई बार कुछ कुछ देश अपनी करेंसी को डीवैल्यू जानबूझकर करते हैं। चाइना ने किया है कई बार, अपने युआन को डीवैल्यू किया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। आपका दूसरे सवाल का तो देखिए परमानेंट तो विष्णु जी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, पर हां मेरी चेष्टा ही रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जब जब आकाशवाणी याद करता है तो मेरी कोशिश रहती है मैं हमेशा यहां पर उपलब्ध रहूं। बाकी आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आपके ऐसे भाव हैं और कभी परमानेंट होने का मौका मिला तो जरूर होंगे।
शरण जी की स्थायी जगह जो है वो हम सब के दिलों में है, श्रोताओं के दिलों में है, और कोई भी निवेशक हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शरद कोहली को ना सुने।
धन्यवाद प्राची।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर अनिल जुड़ रहे हैं। अनिल जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
I think Prachi, we've lost touch with him.
अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, इनका नाम है अमित झा और ये भी दिल्ली से है। जी अपना सवाल पूछिए।
अमित can you hear us?
मुझे लगता है उन्होंने रेडियो
चला। नहीं नहीं, हेलो 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 सर, हेलो।
हाँ बोलिए
जी, अपना सवाल पूछिए।
सर नमस्कार, राजेश सर
जी।
हाँ कोहली सर का नमस्कार सर। मैं जैसे पूछ रहा था कि अभी इस्लामाबाद में जो मीटिंग होने वाली रात को
जी,
तो इसमें क्या संभावना लग रही सर कि आपके हिसाब से? और दूसरी चीज सर, जहाँ तक अभी आपने एक भैया एक सर के बाद आप पूछ रहे बता रहे थे सर फंडामेंटली, तो आईटी की दिग्गज कंपनी है सर, आप तो नाम तो ले रहे थे कार्यक्रम में
जी,
अभी भी कंपनी आईटी की टॉप कंपनियों में से मानी जाती है अभी भी सर
जी,
और उसका मार्केट कैप 9 लाख करोड़ की है, 9 लाख करोड़ का अभी मार्केट कैप है
जी,
बट वो पूरे ईयर में सर वाई डी में आप 24% माइनस है सर, यानी कि पूरे 6 महीने के दौरान यानी दिसंबर से लेके 21 दिसंबर से लेके आज तक 24% माइनस है। आईटी की दिग्गज कंपनी है, लेकिन डर ये लग रहा है सर कि 24% कहीं 50% पे न चला जाए, तो क्या सर लेना चाहिए? और आईटी की दिग्गज कंपनी है, शायद आप समझ गए होंगे सर। धन्यवाद।
देखिए ये हमारे श्रोता जो है ना बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, आप नाम मत लें, वो क्या करते हैं मार्केट कैप बता के, दिग्गज कह के, बड़ी कह के, कुछ किसी तरह आप मुंह से बस कंपनी का नाम निकाल दे, पर हम निकालने वाले नहीं है अमित, आप निश्चिंत रहिए। इस्लामाबाद में क्या होगा ये तो आपको कुछ घंटे बीतने के बाद पता लग जाएगा। अमेरिकन डेलीगेशन, ईरान डेलीगेशन वहां पहुंच चुका है और पूरी दुनिया की नजर उस पर है, उम्मीद सब कर रहे हैं कि ये विध्वंसक युद्ध जो है ये शांत हो जाए और जो नुकसान दुनिया भर को हो रहा है वो ना हो, हम और आप भी और उन्हीं ऑब्जर्वर्स में, काश हम बता पाते, मैं अगर उस रूम में जा पाता जहां मीटिंग हो रही है तो आपको पहले बताता। दूसरा, आपने आईटी दिग्गज कंपनी का पूछा, देखिए पिछले साल आईटी के लिए थोड़ा सा टफ रहा है क्योंकि एक तो एआई की वजह से ये कंपनीज बहुत प्रेशर में रही, दूसरा जो यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमीज की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो जब ओवरऑल कंपनी कंट्री के ऊपर रिसेशन आता है, देश के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहता है, तो आईटी के ऊपर सीधा उनकी ऑर्डर बुक कम हो जाती है। अब 24% डाउन है या जितनी डाउन है, देखिए ये तो डिपेंड करेगा, पहली बात तो अमित, और एक बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि अगर वैश्विक मंदी के कहीं आहट सुनाई देती है तो हो सकता है और दबाव आए, पर अगर ये युद्ध समाप्त हो जाता है और ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर करनी शुरू हो जाती है बहुत जल्दी, तो फिर हो सकता है कि आपको आपको ये रिकवरी दिखाई दे। पर मुझे लग रहा है भारतीय आईटी कंपनीज ने एआई के लिए अपने आप को तैयार भी किया है और इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी की दिखाई देती है, तो आपको आप लोअर लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए हम नाम तो नहीं लेते हैं तो आपको क्या बताऊं मैं कौन सी कंपनी में, पर ओवरऑल आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनीज आप चुन के उसमें थोड़ा थोड़ा लॉन्ग रन के लिए, इन कंपनीज ने तैयारी की हुई है, ऐसा नहीं है कि सब तरफ निराशा ही निराशा है, इन्होंने काफी हद तक तैयारी की। और इसमें हैरानी की बात यह कि जिस एआई से हम डरते हैं इन्हीं कंपनीज ने एआई को तैयार किया और आज उन्हीं कंपनीज को वो खाने को आ रही है, ऐसे ऐसे लोग मुझे बोलते हैं कि इस तरीके से हो रहा है, तो इतना ज्यादा निराशा हमें जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें, मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने दें। ये आपका जो पहले वाले सवाल से दूसरा सवाल है, इस्लामाबाद अगर कामयाब रहता है तो फिर आपका, दोनों इंटरकनेक्टेड है। जी
बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। एनआर प्रसाद हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछिए महोदय।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। हेलो राजेश जी, हेलो प्राची जी,
हेलो
शरद जी, टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज एडीबी सेट दैट आवर जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 वुड राइज फ्रॉम 6.6 टू 6.9। आई एम श्योर दैट इंडिया इज स्टिल गोइंग टू डू वेरी गुड। आई वॉन्ट टू हैव योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स ऑन दिस। माई सेकेंड क्वेश्चन इज I'm sure this war comes to some, maybe the meeting is going on, it comes to some level. What I am driving at is, sometime or the other, this petrol diesel is going to, likely to go up definitely after April 30th, 100% sure. My, what I want to ask you is, would it be a transport business related to logistics will be a good bet to invest on? Thank you. These are my two questions.
Mr. Prasad, your first question is regarding India's GDP estimates. Well, India's GDP is, the Indian growth story is intact. And I think the global rating agencies and the global agencies are talking good about India. Well, obviously, war does have economic impact across the world. So we cannot remain completely immune from it. So there might be some pressure on the GDP in the times to come, or maybe not. Your second question is whether a petrol, diesel, I don't know on what basis you are saying that after 30th April, maybe Mr. Prasad, has a lot of interest in politics, and probably he wants to touch upon that. But because we don't discuss all that here, I think the main aspect is that the Indian oil marketing companies have managed to cushion the price increase because of the government decision to reverse the excise. So they have been able to sail through. But since if these discussions are positive, then the crude oil prices will start cooling down. If Strait of Hormuz opens and if there's some kind of agreement is reached tonight or tomorrow, then the crude oil prices start subsiding. If they start subsiding, however, having said that, I think some damage is very long term because like the Qatar plant and all that, they have been damaged. So let's hope that crude oil prices come back to that $70, or if not 70, then at least $80. When these OMCs will be able to negotiate the prices. Don't be so sure that after 30th April, Mr. Prasad, it is definitely going to rise. I wanted to ask who told you this. We wanted to know that where did you get this information from? Because let's not sound very pessimistic, Mr. Prasad. Thank you.
आगे बढ़ते हैं। भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर जी कृपया अपना सवाल पूछिए।
Market Mantra team, good evening. Kohli ji, good evening.
Good evening.
Sir, my question is that FII was pulling out heavily and the sufferers are mostly Indian investors.
Yeah.
Almost 13-14 crore or 17% of Indian population is somehow connected to stock market.
Yeah.
Directly through funds or stocks or through funds or through pension funds or through insurance.
Yeah.
Now, government has not bothered to look into the interest of the FII, which is the basic reason a stock market has fallen. What is it that government is not looking into for FII's interest? Because we have to take care of their interest. Otherwise, they will run away and we will lose a lot of money. And in then, jaise hi paisa jayega stock market se, hamari domestic problem shuru ho jayenge because people will not spend money. Not spend money means not GDP not going up. So FII school bulana bahut zaruri hai. Aur kya wajah hai ki hamari government us pe dhyan nahi de pa rahi hai? Thank you.
Shankar, I have a slightly different view here from what you said. See, FIIs at one point of time in our markets, they were holding about 20 to 25% as far as the total market cap is concerned. It has now gone down to about 15%. So I was speaking on another platform where I said the Indian stock markets are gradually becoming Atmanirbhar. We don't want to depend on these FIIs. And you know, a different perspective of your answer is that if I have invested 10 rupees today in the market and my money has become 20 rupees, I have a right to pull it out. How can a government stop me from doing that? So government cannot frame regulation, Shankar, please understand, for free market movement of investors. If government stops my hand, okay, you don't sell now, you know, because you we don't want you to go away. So that is not possible, you know, legally not possible. Market dynamics, market fundamentals do not permit that. So first of all, government doesn't interfere in free functioning of the stock markets. And every FII has a right to book profits and take away. They will come back as well. You know, when the valuations are attractive, they will come back. And most importantly, I think Indian markets are becoming Atmanirbhar because if I leave out this very important point with the permission of Prachi and Rajesh, I would like to bring out here. If we leave out this war phase, Shankar, pay attention to this. Just before the war started on 20th Feb, we were around 25,000 Nifty. Mm. And you know, FIIs have been selling for almost 1.5 years now. Almost 2 years rather. But then we maintained that level. So I was very happy with that. Despite FII exodus, we were maintaining those levels, which means our market was becoming Atmanirbhar for that matter. So I think it's a matter of pride. Let them go. Don't worry. Mm-hmm. Let them take away their money. Our DIIs, our Desi boys, are stronger. Yeah, well, you see, well, a corresponding amount is always put by the Indian institutions. So I think we need not worry. Let them videshi hain, jaane dijiye, jaate hain, to hum apne aadhar pe chalenge na.
So on that optimistic note, let me move on to the first headline story. High-level delegations of US and Iran have arrived in Islamabad for talks to establish lasting peace in West Asia. A US government aircraft carrying a US delegation led by Vice President J.D. Vance landed in Islamabad. The delegation includes Vice President J.D. Vance along with Special Envoy Steve Witkoff and Advisor Jared Kushner, who are leading Washington's efforts at the talks. Before his departure for Pakistan, Mr. Vance said he was looking forward to the negotiation, hoping that it would be positive. Iran is represented by Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. In a social media post, Mr. Ghalibaf had said that two of the measures mutually agreed upon between the parties are yet to be implemented, including a ceasefire in Lebanon and the release of Iran's blocked assets prior to the commencement of negotiations. He said these two matters must be fulfilled before negotiations begin. Talks are expected to focus on Iran's nuclear enrichment program, ballistic missile development, and the Strait of Hormuz. The negotiations follow a 2-week ceasefire window announced by the US President Donald Trump.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि हाल ही में घोषित युद्ध विराम पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। गोयल ने सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कास्बी के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने बढ़ते व्यवधानों और अस्थिरता के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से चलाने सऊदी के लोगों के दृढ़ संकल्प की सराहना की है। श्री गोयल ने मौजूदा संघर्ष के दौरान सऊदी अरब में हुए हमले की निंदा की और भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब के प्रयासों की सराहना भी की। हमारे साथ मुंबई से कपिल जुड़ रहे हैं। श्रोताओं, कपिल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए।
थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। और मेरा प्रश्न है रिगार्डिंग सिल्वर एंड गोल्ड। इज इट राइट टाइम बाय? बिकॉज ये रुका पड़ा है, तो कोहली साहब का क्या सजेशन है, प्लीज गाइड कीजिए। धन्यवाद।
कपिल जी, इस समय वाकई आपने ठीक कहा, एक 4700 और 4800 डॉलर्स के बीच में घूम रहा है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब लड़ाई छिड़ती है तो ऐसा माना जाता है कि गोल्ड सिल्वर को ऊपर जाना चाहिए, पर इस बार क्या हुआ, लड़ाई खाड़ी में छिड़ी, उसकी वजह से क्रूड ऑयल बढ़ा, क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। मैं ये नहीं कहता डॉलर मजबूत हो गया, डॉलर की डिमांड बढ़ने से एक डॉलर इंडेक्स होता है जिसमें छह करेंसीज आती हैं, वो डॉलर इंडेक्स बढ़ गई, उसकी वजह से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, बॉन्ड यील्ड 4.5% के आसपास पहुंच गई, अमेरिका में बहुत बड़ा नंबर माना जाता है, उससे सोना चांदी प्रेशर में आया। मुझे लगता है कपिल के आपके सवाल पे सीधा आता हूं मैं, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए लेते हैं, और मजे की बात यह है राजेश प्राची कि मैंने लंबे वक्त को अब इतना लंबा नहीं बनाया कि कपिल साहब बुजुर्ग हो जाएं, मात्र 2 से 5 साल के लिए अगर आप इसको रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छा रिटर्न देगा। हालांकि निवेश की सलाह तो जैसा शुरू में डिस्क्लेमर देते हैं हमारे माननीय एंकर्स, वो उस डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, परंतु ऐसा लग रहा है क्योंकि अंडरटोन जो है गोल्ड और सिल्वर की, इन दोनों कमोडिटीज की, वो बुलिश लग रही है। बिल्कुल, अगर आप कपिल एक तो थोड़ा थोड़ा करके लें और इसको लंबे वक्त के लिए लें, और फिर मिलेंगे, फिर आपके साथ कभी लड्डू वड्डू खाएंगे
जरूर। दिल्ली से हमारे साथ राजेंद्र जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार मैडम जी।
नमस्कार
मैडम जी, मैं ये भारतीय स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट है, तो मैं वहाँ FD कराने गया था 4 साल पहले
जी,
तो SBI वालों ने मेरा जो है वो SBI लाइफ पॉलिसी पकड़ा दी, तो उसमें जो है जी मेरा पैसा जो है घटता ही जा रहा है, मेरा पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये अब ये 5 साल से मैं वहां पर गया, तो मैंने कहा जी मेरे पैसे मेरे को वापस करो, वो कह रहे 5 साल से पहले ये पैसा मिलेगा नहीं, तो जी मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे, 1,70,000 रुपए रह गया जी सर जी अब।
ओहो, हमें बहुत खेद है इस बात का राजेंद्र जी कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी भी मिक्स करके नहीं करना चाहिए, इनको अलग अलग, इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। पर मुझे लग रहा है कि राजेंद्र जी को शायद जानकारी नहीं होगी, और अभी आपको याद होगा वित्त मंत्री महोदया ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया था कि बैंकों को अपने कोर एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि डिपॉजिट और लेंडिंग जो है, बैंकों का ध्यान ना थोड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज पे ज्यादा जा रहा है, इंश्योरेंस बेच दो, म्यूचुअल फंड्स बेच दो, तो ये वहीं से निकल के आ रहा है। तो बहुत खेद है अगर आप FD कराने गए थे और उन्होंने आपको एक हम गली की भाषा में एक शब्द प्रयोग करते थे चेप दी, तो उन्होंने आपको आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी बदले में, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पर राजेंद्र जी ये भी तो सच है, जब वो आपको समझा रहे थे तो उस समय आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आपको नहीं बताया होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आप भी तो थोड़ी उनकी उनकी सेल्समैनशिप में आ गए, तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी गलती दोनों एंड से है। पर कोई बात नहीं, अब तो देखिए जो हुआ सो हुआ, अब 5 साल इंतजार कर लीजिए, अब तो ये गले पड़ा ढोल है आपको बजाना पड़ेगा, तो 5 साल बाद फिर पूरा होके और फिर आप करिएगा, और आगे से फिर ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस और सभी श्रोताओं के लिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के जो मिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो ना बेस्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं ना बेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन दोनों को अलग करके, हालांकि दोनों ही जरूरी है, पर अलग अलग करके लेना चाहिए। आपकी आपकी इस घटना से राजेंद्र जी सभी श्रोता सीख लेंगे, और जो आपसे गलती हुई मैं उम्मीद करता हूं कम से कम इस बात से सुकून लीजिए कि आपकी इस गलती से बाकी लोगों को एक सीख मिलेगी, और आप इंतजार करिए खत्म हो जाएगा तो फिर निकल के आगे से मत करिएगा।
जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज योगेश, अ वार्म वेलकम योगेश, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
थैंक यू सो मच सर जी, मेरा सवाल ये है कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर भी और जानकार लोग भी ये कहते हैं कि आजकल मकान खरीदने के बजाय किराए से रहना ज्यादा फायदेमंद होता है, तो आपको इसमें क्या कहना है, एक रिटेल निवेशक को रहने के लिए अगर मकान चाहिए हो तो उसको खरीदना चाहिए या फिर उसको रेंट पे रहने में फायदा है? और इसमें ही अगर मैं एक छोटा सा सवाल ये भी जोड़ दूं कि अगर किसी के पास ऑलरेडी पैसा है, हम होम लोन की बात नहीं कर रहे हैं, पैसा किसी के पास रखा हुआ है तो वो कैसे डिसीजन करे?
देखिए मुझे लगता है कि मकान खरीदना ना केवल एक निवेश बल्कि एक इमोशनल कल्चरल सोशल डिसीजन भी होता है। तो आप अगर किराए पे रहेंगे योगेश, तो आपके किराएदार आपके जो मकान वाले साहब हैं, आपको 2-2, 3-3 साल बाद आपको फिर मकान बदलने पड़ेंगे। मुझे लगता है मकान बदलना बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। ये ठीक है कि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से राजेश प्राची ये बोला जाता है कि भाई अगर आपका होम लोन से ज्यादा आपको इंटरेस्ट, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो आप किराया देके रहते रहिए, मान लीजिए किराया कम पड़ रहा है। पर किराए के मकान में सरदर्दियां बहुत हैं, ये तो आप मानेंगे योगेश। तो मुझे लगता है अब घर में जब लोग सलाह करते हैं ना फैमिली में, तो कहते हैं एक अपना मकान होना चाहिए, एक घर हो सुंदर सा अपना सा, तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। हमें योगेश इसको खाली फाइनेंस एंगल से नहीं देखना चाहिए। मुझे ये मेरा निजी तजुर्बा है 3.5 दशक का कि मकान लेना खाली फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, एक घरौंदा हो, मूवीज बनी है इसके ऊपर, एक घरौंदा एक घर हो सपनों का वगैरह वगैरह, तो वो फिर सपने कैसे पूरे होंगे अब अगर खाली फाइनेंस को देखेंगे? तो आप ये फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तब मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2.5-3% रिटर्न मिलता है किराए का उसी से।
डॉक्टर एनएल जॉइंस us from Delhi, please quickly ask your question.
हेलो
जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
हाँ मैं, नमस्कार डॉक्टर कोहली को, बहुत बहुत आप सबको, राजेश जी आपको भी, राजेश जी आप नहीं है लेकिन बहुत अच्छा आपका. तो आई हैव टू थ्री क्वेश्चन
जी.
ये है कि कभी कभी सुझाव
मैं इनको बोलना चाहूंगा कि प्राची नई नहीं है, प्राची बहुत एक्सपीरियंस है, आपको उनकी एंकरिंग से पता
लगता होगा. क्वेश्चन बोलूं, मैं क्वेश्चन बोलना चाहता हूं.
जी बोलिए.
हाँ क्वेश्चन, मेरा प्रश्न ये है कि कंज्यूमर सरप्लस ये कंसेप्ट क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस एक जो सुना मैंने, और एक परफॉर्मेंस बजटिंग का क्या फ्यूचर है ये मैं जानना.
परफॉर्मेंस बजटिंग पे पूछ रहे हैं.
परफॉर्मेंस बजटिंग होती है जब आप किसी का, पता नहीं आप कॉर्पोरेट टर्म, अगर आप कॉर्पोरेट टर्म्स में पूछ रहे हैं तो कंपनी की जिस प्रकार से पीछे की आउटकम होती है, जो उसके फाइनेंशियल्स होते हैं, उसके आधार पर बजटिंग की जाती है. डॉक्टर अनिल, तो क्योंकि आपका लाइन में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, पूरा तो हम नहीं सुन पाए, तो ये इसका यही अर्थ होता है कि आप जब बजटिंग, आगे की बजटिंग तो आगे की होती है हमेशा, तो बजटिंग करते हैं आप प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर, उसको हम परफॉर्मेंस बजटिंग कहते हैं. अगली बार डॉक्टर अनिल फिर से पूछिएगा, आपके लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस थी, खड़खड़ बीच में आ रही थी, आपके कुछ शब्द उसमें लुप्त हो गए.
जी, अब आइए जान लेते हैं कि सप्ताह के दौरान हमारे दोनों ही प्रमुख सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने लगातार छह सप्ताह की गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए पांच साल से अधिक समय में इस सप्ताह अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ दर्ज किया. यह उछाल पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में अस्थायी युद्ध विराम, तेल की कीमतों में भारी गिरावट और सकारात्मक वैश्विक संकेतों की वजह से आया. सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शुक्रवार को अपने अंतिम सत्र में 4230 अंक यानी 5.8% बढ़कर 77,550 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1348 अंक यानी 5.9% बढ़कर 24,051 पर बंद हुआ. विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपए की चाल मजबूत रही. श्रोताओं, सप्ताह के दौरान रुपया 37 पैसे बढ़कर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 92.73 पर स्थिर हुआ.
Major U.S. indices ended on a mixed note yesterday. The Dow Jones Industrial Average fell nearly 0.6%, the S&P 500 dropped 0.1%, and the Nasdaq Composite Index climbed over 0.3%. For the week, all the three major indices registered their best weekly percentage rise since November last year, aided by announcement of temporary ceasefire in the ongoing West Asia conflict. The Nasdaq jumped 4.7%, S&P 500 climbed 3.6%, and the Dow rose 3%. And the global crude oil prices settled lower yesterday and posted steep weekly decline ahead of talks between Iran and the US aimed at securing a lasting peace in West Asia. Yesterday, Brent crude futures settled over 0.7% lower at $95.20 per barrel. West Texas Intermediate crude futures fell 1.3% to close at $96.57 per barrel. Over the week, the Brent plunged 12.9% and the WTI tanked 13.4%.
Ek sanchipt tippani, Sharad.
ऑल आईज ऑन इस्लामाबाद. प्राची, राजेश, आई थिंक इस्लामाबाद के उस कमरे में जहां मीटिंग हो रही है, क्रूड ऑयल की कीमतें भी वहीं अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, और मुझे लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मूस, जहां से शिप्स निकलने में अभी भी कठिनाई हो रही है, वही निर्णय उसी पे आधारित रहेगा सारा.
हाउ विल द मार्केट्स बिहेव ब्रीफली नेक्स्ट?
अगेन मार्केट्स आर ऑल्सो वेरी कीनली, यस एब्सोल्युटली, ऑल आईज ऑन इस्लामाबाद आई वुड से फॉर द आउटकम. लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड.
शरद जी, कार्यक्रम में आने और हमारे तमाम श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे सवालों के इतने उत्साहपूर्वक जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
माय प्लेजर.
थैंक यू शरद फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, डेलीगेशंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान रीच इस्लामाबाद फॉर टॉक्स टू सिक्योर लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस पोस्ट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली गेन इन मोर देन 5 years. And global crude oil prices logged steep decline of around 13% this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.